أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپستھت ہوں میری ایشور سے یہی آشا ہے کہ آپ سبھی بلکہ دنیا کا ہر مسلمان اپنے جیون میں سکھی اور پرسن ہو ہم اپنے آج کے کاریکرم میں مبتلات نماز سے سمبندھت بات چیت کر رہے ہیں اور ہماری بات چیت اس مبتلات نماز میں جس چیز سے سمبندھت ہے وہ ہے نماز میں بات چیت کرنا یا نماز میں بولنا اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی نماز کے بیچ میں جان بوجھ کر کوئی شبد بولے کوئی اکشر بولے تو اس کی اور اس سے کچھ سمجھانا چاہے کسی دوسرے کو تو اس کی نماز باطل ہے چاہے وہ بولنے والا جو چیز بول رہا ہے وہ ایک اکشر ہو جیسے آ جا کھا اس پرکار کے شبد یا ایک اکشر سے زیادہ ہو چاہے اس کی کوئی میننگ ہو اس کا کوئی ارتھ نکل رہا ہو یا ارتھ نہ نکل رہا ہو اس کی نماز باطل ہے لیکن یہاں پر وہ لوگ جو آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر بولنے والے نے ایک اکشر بولا ہے تو اگر اس اکشر کی کوئی میننگ کوئی ارتھ نکلتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے جیسے اگر نماز پڑھتے سمے انسان قا یا قے کا لفظ بولتا ہے قے کا لفظ عربی بھاشا میں اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو روکو بچا لو اس پرکار کی چیزیں اس پرکار کے اس کا ارتھ ہوتا ہے یا اگر کوئی دوسرا ویکتی ورڈ مالا کے بارے میں پوچھ رہا تھا اردو ورڈ مالا کے بارے میں یا حروف تہجی کے بارے میں پوچھا تھا الف کے بعد کیا آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس نے بولا بے بے بھلے ہی ایک شبد ہے ایک اکشر ہے لیکن چونکہ اس کی میننگ نکلتی ہے اس سمے جب اس کا سوال ہوتا ہے سوال پوچھنے والے نے کیا پوچھا کہ اردو میں الف کے بعد کیا آتا ہے اس نے کہا بے بھلے ہی ایک شبد بولا ایک اکشر بولا ہے لیکن چونکہ اس کا ارتھ نکلتا ہے اس لیے اس کی نماز باطل ہے یعنی آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کا آدھار یہ ہے کہ اگر ایک اکشر بولا گیا ہے تو اگر اس پہ ارتھ نکلتا ہے تب اس کی نماز باطل ہے اگر ارتھ نہیں نکلتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے لیکن آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر دو اکشر یا اس سے زیادہ بولتا ہے تو بھلے ہی اس کا ارتھ نکلے یا نہ نکلے اس کی نماز باطل ہوگی اس کے بعد جو اسی بولنے والے میں مسئلہ نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسا بولتا ہے جو نماز کا جز ہوتا ہے یا نماز کے اندر ذکر کر رہا تھا تو اسی میں سے کچھ بولتا ہے اور اس سے کچھ دوسرا دوسرے کو کوئی شبد کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذکر کی نیت کے ساتھ کچھ بولا جائے اور اس سے دوسرے کو کچھ سمجھانے کی بھی نیت کی جائے تو اس میں اس کی نماز باطل نہیں ہے لیکن اگر سمجھانے کی نیت پہلے ہو اور ذکر کی نیت بعد میں ہو تو اس کی نماز باطل ہے ایک مثال دیتا ہوں مسئلہ پورن روپ سے اسپشٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے انسان نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے سمے ذکر کی نیت سے اس نے اللہ اکبر کہا لیکن دوسرے کو چونکہ کچھ اس کو سمجھانا تھا کچھ بتانا تھا اس لیے اس نے اللہ اکبر کہتے سمے اس شبد کو تیز آواز میں کہا جیسے عام اگر بھاشا میں کہتا ہے اللہ اکبر تو اس نے نماز پڑھتے ہوئے کہا اللہ اکبر اس طرح کہا اگر اس پرکار کہا چونکہ اس کی نیت پہلے ذکر کرنا تھی بعد میں دوسرے کو سمجھانا اس لیے اس کی نماز صحیح ہے اس کی نماز پر کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اگر پہلے اس کی نیت کسی کو سمجھانا رہی ہو مثلا کوئی بچہ کچھ لے کے بھاگ رہا ہے دوسرے کو بتانا ہو دیکھو بچہ بھاگ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ بولے اسے اللہ اکبر کہہ دیا تیز تو چونکہ پہلے اس کی نیت سمجھانا تھی بعد میں ذکر تھی اس لیے اس کی نماز ہمارے فقہا کہتے ہیں باطل ہے اور یہ بولے جانے میں شمار کیا جائے گا اس کی نماز باطل ہوگی تو یہ وہ چیز تھی جو ہمارے بولے جانے سے سمبندھت یعنی اگر نماز میں انسان بولتا ہے اور ان شرطوں کے ساتھ بولتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی اس کے بعد جو چیز ہماری نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے ہنسنا یا رونا यानी अगर नमाज के बीच में इंसान हंसता है या रोता है तो कुछ शर्तों के साथ उसकी नमाज बातिल होगी। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हंसना या रोना जानबूझ के हो, यानी अगर नमाज पढ़ते समय जानबूझ के इंसान हंसने या रोने लगे तो उसकी नमाज बातिल है। दूसरी चीज़, किस समय नमाज बातिल नहीं होती है, केवल अगर इंसान नमाज पढ़ते समय मुस्कुरा रहा है, हंसा नहीं है, आवाज़ नहीं निकली है, हंसा नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट आ गई है, तो मुस्कुराने से नमाज बातिल नहीं होती है। उसके बाद जो हंसना और जो रोना हमारी नमाज को बातिल करते हैं, जो रोना हमारी नमाज को बातिल कर देता है, अगर कोई इंसान सांसारिक वस्तु के लिए बुलंद आवाज़ में रोए तो उसकी नमाज बातिल है। यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी एक बात कहते हैं, वो ये है कि अगर इंसान सांसारिक वस्तु के लिए रो रहा है तो भले उसकी आवाज़ तेज़ हो या धीमी हो, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। आयतुल्लाह सिस्तानी का यह विशेष मसला, यानी उसमें आवाज़ का तेज़ होना कोई शर्त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सांसारिक वस्तु के लिए रोना मात्र ही नमाज को बातिल कर देने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन उसके बाद अगर धीमी आवाज़ में रोया जा रहा है, यानी आवाज़ नहीं निकल रही, केवल आंसू बह रहे हैं या बहुत हल्की आवाज़ है, या ईश्वर के खौफ से या क़यामत के भय से इंसान को अगर रोना आ जाता है तो यहाँ पर नमाज बातिल नहीं है। बल्कि अगर कोई इंसान अपनी नमाज के बीच में ईश्वर के खौफ से या क़यामत के भय से रोता है तो इसकी नमाज उच्च कोटि की नमाज कहलाई जाएगी, ये नमाज का बेहतरीन सवाब पाएगा। क्यों? क्योंकि नमाज का अर्थ ही ये है, नमाज का मकसद ही ये है कि इंसान ईश्वर तक पहुंच जाए, और अगर ईश्वर के भय से इंसान रो रहा है या क़यामत के डर से इंसान रो रहा है तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमारे हंसने या रोने से संबंधित थीं, यानी अगर इस प्रकार इंसान नमाज में हंसता या रोता है तो उसकी नमाज बातिल होगी। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो ये है कि क़िबले की तरफ से चेहरे का घुमा लेना, यानी अगर इंसान नमाज पढ़ते समय किसी कारणवश अपने चेहरे को क़िबले की तरफ से मोड़ लेता है तो उसकी नमाज बातिल होगी। तो इसमें सबसे पहला मसला जो आएगा वो ये है कि अगर इंसान जानबूझ के, जैसे कि हर मसले में चीज़ है कि अगर जानबूझ के इंसान कोई कार्य करता है जो नमाज के में नहीं करना चाहिए तो उसकी नमाज बातिल है, इसी प्रकार इसमें भी है कि अगर इंसान जानबूझ के क़िबले की तरफ से अपने चेहरे को मोड़ लेता है तो उसकी नमाज बातिल है। यानी कितना मोड़ ले, इतना मोड़ ले कि लोग ये कहें कि ये इसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था। जैसे अगर मैं सामने बैठा हूँ, इधर क़िबला है, तो अगर यूँ क़िबला है और यूँ मोड़ लिया उसने चेहरे को, तो लोग अगर देखने वाले ये कहते हैं इसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद अगर भूले से, तो पहले जानबूझ के मसला हुआ, जानबूझ में तो नमाज बातिल है, अब अगर यही कार्य भूले से हो गया तो भूले के बारे में क्या मसला है? अगर भूले से इंसान अपने चेहरे को क़िबले की तरफ से मोड़ ले, बहुत ध्यान देने वाला मसला है कि अगर इंसान भूले से अपने चेहरे को क़िबले की तरफ से मोड़ लेता है और इतना मोड़ता है कि उसका चेहरा बिल्कुल क़िबले की दाहिने या बाएं तरफ हो जाता है, जैसे मेरे हाथ को देखिए, अगर क़िबला बिल्कुल सीधा है, उसने मोड़ा, इतना मोड़ा कि ये दाहिनी तरफ पहुँच गया या इतना मोड़ा कि चेहरा बाएं तरफ पहुँच गया, अगर चेहरा बिल्कुल दाहिने या बिल्कुल बाएं तरफ पहुंच जाता है भले ही उसने भूले से किया हो, तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी और उसको चाहिए कि नमाज को दोबारा पढ़े। लेकिन अगर मोड़ा उसने भूले से बिल्कुल दाहिने या बाएं तरफ नहीं किया, जैसे इधर था क़िबला, उसने इतना मोड़ा या इतना मोड़ा, बिल्कुल दाहिने या बाएं नहीं किया, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी बल्कि उसकी नमाज सही है। तो इस समय हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस समय हम नमाज पढ़ रहे हैं हमारा चेहरा पूर्ण रूप से क़िबले की तरफ हो और हमारे चेहरे को क़िबले की तरफ से नहीं हटना चाहिए। ये वो चीज़ थी जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है, यानी अगर क़िबले की तरफ से चेहरे को मोड़ा गया तो नमाज बातिल है। उसके बाद और जो चीज़ हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है नमाज की सूरत का बिगड़ जाना। जैसे कि जब हम एक के बाद क्रम अनुसार आपके सामने बयान कर रहे थे, तब भी हमने इस चीज़ को बयान किया था कि अगर इंसान नमाज पढ़ते समय कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी नमाज की स्थिति, नमाज की सूरत बिगड़ जाती है, तो उसकी नमाज बातिल होगी। जैसे कि अगर इंसान नमाज़ पढ़ और ये चीज़ जो सूरत का बिगड़ जाना है, चाहे जानबूझ के हो चाहे भूले से हो, अगर जानबूझ के किया तब तो नमाज बातिल है ही, अगर भूले से किया है तब भी उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। जैसे इंसान नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते समय मान लीजिए भूले से उसे ताली पीटना शुरू कर दिया, या उछलना कूदना शुरू कर दिया या इस प्रकार का कोई और कार्य करना शुरू कर दिया। तो अगर नमाज़ पढ़ते समय नमाज़ की सूरत बिगड़ जाती है, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे भूले से हो, उसकी नमाज़ बातिल होगी। उसके बाद जो मसला आता है इसी में सूरत बिगड़ जाने के मामले में, अब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चुप रह जाता है, तो अगर बहुत देर चुप रह जाए तो उससे भी सूरत बिगड़ जाती है। तो ये नमाज़ के बारे ही मसला आएगा कि अगर इंसान नमाज़ पढ़ते समय इतनी देर चुप रह जाए कि देखने वाले ये कहें कि ये नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, यही नमाज़ की सूरत बिगड़ जाए। तो अगर चुप रहना इतनी देर हो जाए कि देखने वाले ये कहें नमाज की सूरत बिगड़ गई है, तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। इसके बाद यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अगर नमाज़ पढ़ते समय चुप हो जाए और चुप होने के बाद कोई इस बात का संदेह हो, शंका हो कि पता नहीं मैं इतनी देर चुप हुआ था कि नहीं कि हमारी मेरी नमाज की सूरत बिगड़े या नहीं, नहीं शंका हो रही कि इसका चुप होना नमाज की सूरत को बिगाड़ने वाला था या नमाज की सूरत को बिगाड़ने वाला नहीं था, तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि उसको चाहिए कि अपनी नमाज को पूरी कर दे, यानी नमाज को तोड़े नहीं, नमाज को पूरी करे और नमाज को पूरी करने के बाद दोबारा उसी नमाज को पढ़े। यानी अगर जोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, जोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते बीच में चुप हो गया और बाद में उसको संदेह हुआ कि इसने मेरी नमाज की सूरत को बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के मुताबिक इस जोहर की नमाज़ को पहले पूरा करे, उसके बाद फिर इसी जोहर की नमाज़ को दोबारा पढ़े। उसके बाद जो मसला आता है वो ये है कि नमाज़ को तोड़ देना या नमाज को छोड़ देना आम हालात में सही नहीं है बल्कि हराम है। नमाज को इंसान बीच में छोड़ नहीं सकता, अगर नियत करके नमाज शुरू कर दी है तो उसकी पहली ज़िम्मेदारी ये है, पहला दायित्व ये है कि नमाज को पूरा करे। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान नमाज शुरू करने के बाद नमाज को बीच में तोड़ सकता है, नमाज को बीच में छोड़ सकता है। जैसे कि अगर इंसान की स्वयं जान को ख़तरा हो तो अपनी जान को बचाने के लिए इंसान नमाज को तोड़ सकता है, या अगर किसी ऐसे की जान को ख़तरा हो जिसकी जान बचाना उसके ऊपर वाजिब था, मसलन बेटे की जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में अपनी नमाज को तोड़ सकता है, या माल को ख़तरा हो, अपने माल को या किसी ऐसे के माल को ख़तरा हो जिसके माल को बचाना उस नमाजी के ऊपर वाजिब था, तो वो अपनी नमाज को तोड़ सकता है, या इज़्ज़त को ख़तरा हो तो अपनी नमाज को तोड़ सकता है। बल्कि यहाँ पर यह कहा जाए तोड़ सकना एक अलग शब्द है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर यही चीज़ें पेश आ जाएँ तो नमाज को तोड़ना वाजिब हो जाता है, यानी अगर नमाज ना तोड़े तो वो पापी होगा और उसने गुनाह किया होगा। तो ये वो चीज़ें थीं, ये वो स्थान थे जहाँ पर नमाज को तोड़ सकता था इंसान। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इंसान, बल्कि इस तरह कहा जाए कि बाज़ जगह पर कर्ज़ देने के लिए भी नमाज को तोड़ सकता है, यानी कर्ज़ देने का मतलब कर्ज़ अदा करने के लिए। दो तीन स्थान ऐसे हैं जब इंसान कर्ज़ के लिए अपनी नमाज को तोड़ सकता है। पहली शर्त ये, यानी दो तीन शर्तें ऐसी हैं जब इंसान कर्ज़ के लिए नमाज को तोड़ सकता है। पहली शर्त यह है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने लिए खड़ा हुआ है, यानी नमाज की नियत कर चुका था, नमाज शुरू कर चुका था, उसी समय कर्ज़ देने वाला आ जाए और अपने कर्ज़ को मांगने लगे उस और कह रहे कि मेरा कर्ज़ वापस करो। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज का समय इतना कम ना हो कि अगर वो कर्ज़ अदा करे तो उसके बाद नमाज़ पढ़ सकता हो, नमाज का समय अधिक हो कर्ज़ देने के बाद दोबारा नमाज़ पढ़ सकता हो, तो उसको चाहिए कि नमाज को तोड़ दे, नमाज को तोड़ने के बाद कर्ज़ अदा करे और कर्ज़ अदा करने के बाद नमाज को अंजाम दे। तो तीसरी शर्त यह है कि जिस समय इंसान कर्ज़ देने के लिए अपनी नमाज को तोड़ सकता है, वो ये है कि वो कर्ज़ को नमाज के बीच में अदा ना कर सकता हो, यानी मांगने वाला आ गया है, कर्ज़ जिसने दिया था वो मांग रहा है, समय भी हमारे पास ज़्यादा है और हम अपना कर्ज़ नमाज के बीच में अदा नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी जेब में स्वयं उस समय पैसा नहीं कि हम अपनी नमाज पढ़ते पढ़ते ही जेब से पैसा निकाल के उसको दे दें, ये नहीं कर सकते। यहाँ अपने घर में नहीं या अपने किसी दोस्त से इशारा करके नहीं कह सकते हैं कि इसका कर्ज़ अदा कर दो। तो अगर ऐसी सूरत है कि मांगने वाला आ गया है, समय भी ज़्यादा है और नमाज के बीच में भी वो कर्ज़ अदा नहीं कर सकता है, तो उसको चाहिए कि पहले नमाज तोड़ दे, नमाज तोड़ने के बाद कर्ज़ अदा करे, कर्ज़ अदा करने के बाद दोबारा अपनी नमाज को पढ़े। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर कर्ज़ अदा करने के लिए नमाज तोड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समय इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज के बीच में उसको ये पता चलता है कि जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहा है वो मस्जिद नजिस है, तो उस वक्त उसका दायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी वो क्या करे। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर नमाज के बीच में उसको ये पता चलता है कि मस्जिद अपवित्र थी, मस्जिद नजिस थी, और नमाज का वक्त भी कम नहीं है, यानी नमाज के समय नमाज का बहुत अधिक है, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज को छोड़ दे। नमाज तोड़ने के बाद पहले मस्जिद को पवित्र करे, उसके बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर समय कम है, अगर समय कम हो और वो नमाज के बीच में नमाज पढ़ते पढ़ते ही उस स्थान को पवित्र ना कर सकता हो, तो उसको चाहिए अपनी नमाज को समाप्त करे, और नमाज को समाप्त करने के तुरंत बाद पहली फुर्सत में कोशिश ये करे कि मस्जिद को पवित्र करे। इसके बाद जो चीज़ एक मकरूह चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने पिछले मसले में बताया था कि इंसान अपने माल की, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए नमाज को तोड़ सकता है, बल्कि कभी कभी वाजिब हो जाता है। लेकिन जो माल को बचाने की बात है वो ये है कि कभी पैसा इतना कम ना हो, माल इतना कम ना हो कि उसकी कोई अहमियत ना रह जाए। अगर बेअहमियत माल के लिए नमाज तोड़ा जा रहा है तो ये कार्य मकरूह है, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये वो मसले थे जो हमारी उस चीज़ से संबंधित है जहाँ पर हमारी नमाज बातिल हो जाती है। तो हमने कुछ मसले आके बाद एक के बाद एक आपको बयान किए कि जैसे ये बयान किया कि अगर नमाज में हंसता और रोता है तो कैसे नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज की शर्तों को तोड़ देता है तो कैसे उसकी नमाज बातिल होगी, क़िबले की तरफ से चेहरे को मोड़ देता है तो किन शर्तों के साथ उसकी नमाज बातिल है, नमाज की सूरत बिगड़ जाती है तो किन शर्तों के साथ उसकी नमाज बातिल है, या कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नमाज को वो तोड़ सकता है। इसके अलावा मुब्तलात नमाज से संबंधित कुछ और मसले हैं जिनको हम अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने अवश्य बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।